ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं त्वं सजीवं स्वादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवस्वे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सदगुरुवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकाल श्री श्री आदराधिकारण मंदिर में। तो आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद पे बलि महाराज का चरित्र पे आज का श्लोक पे कुछ चर्चा करने का। तो ऐसे तो मैं संपूर्ण रूप से अयोग्य हूँ, श्रीमद् भागवतम रसिक भक्तों के लिए है। जो वास्तव में भागवतम तो आस्वादनीय वस्तु है, इसमें विभिन्न प्रकार के श्लोकों पे विभिन्न प्रकार के चर्चाएं हो सकती है। और वो जैसे तो मुझे कुछ खास अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा भाव सेवा के रूप में मैं आज के श्लोक पे कुछ बोलने का प्रयास करूँगा अपने शुद्धिकरण के लिए। तो यहाँ पर हमारे भागवतम के आठवें स्कंद के 19वें अध्याय का 33वां श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा। त्रिविक्रम इमान लोकान विश्वकाय कमीशति सर्वेषं विष्णुवे दत्त्वा मूढवर्त सशे कथम त्रिभि तीन क्रमे पगों द्वारा इमान इन सभी लोकान तीनों लोकों के विश्वकाया विश्वरूप धारण करके कमिशति वे क्रमश विस्तार करेंगे सर्वेशम सब कुछ विष्णुवे भगवान विष्णु को दत्वा दान देकर मूढ़ा हे मूर्ख बर्तिशसे तुम जीविका चलाओगे कथम कैसे अनुवाद ही बोलिएगा। तुमने उन्हें दान देने में तीन पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम उसे दे दोगे वे तीनों लोगों का अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे। तात्पर्य सुनिए श्री प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की बलि महाराज तर्क कर सकते हैं कि बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल तीन पक भूमि देने का वचन दिया है, किंतु प्रकाम विद्वान होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की चाल है। हरि की चाल है जो यहाँ झूठे ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूड वर्त शस्य कथम शब्द बताता है कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्गों के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते थे। अतः जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा आधिपत्य खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि वे इससे ना केवल राजा पर भी स्वयं शुक्राचार्य के परिवार पर वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार महाराज बलि के कृपा पर निर्भर था। एक वैष्णव तथा एक स्मार्ट ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्ट ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि विष्णु वैष्णव सदैव भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। शुक्राचार्य कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्ट ब्राह्मण थे, जिन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी। तो आज हम लोग श्री भागवतम के 8वें स्कंध पे 19वें अध्याय में बलि महाराज का चरित्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे बलि महाराज से भगवान वामन द्वारा की याचना, तो जैसे इसमें प्रश्न चल रहा है कि हमारे जब भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है भगवान वामन अवतार, छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पदनख नीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश। तो 10 अवतारों में प्रसिद्ध अवतार है एक भगवान वामन देव का अवतार। तो उसी भगवान वामन देव से चर्चा हो रही है कि भगवान वामन देव जो है माता अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म हुए, प्रकट हुए, कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए सब असुर समाज देवताओं से सब कुछ छीन लिए थे, सभी राज्य छीने हुए थे, सबके सब छुप चुके थे, क्योंकि उस समय असुर जो है बड़े शक्तिशाली बन गए थे। तो सब लोगों ने सब कुछ समर्पण कर दिया असुरों को। तो जब देखो कि समाज संपूर्ण रूप से असुरों के हाथ में चला गया है, माता अदिति दुखी होने पर उनको उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की। फिर कश्यप जी जो है उपाय बताया कि भगवान का व्रत करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही आपके जो समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्रमशः हम इस प्रसंग को बड़े ही अच्छे ढंग से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं। तो इस समय भगवान वामनदेव प्रकट हुए और बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे नर्मदा के किनारे। तो वहाँ पे भगवान वामनदेव बड़े तेजस्वी बालक के रूप में पहुँचे। उनको देख के बलि महाराज बड़े आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य हो गए, इतने तेजस्वी ब्राह्मण छोटा सा बालक और हमारे यज्ञ स्थान पे आ रहा है। उनको लगा कि साक्षात सूर्यदेव आ रहे हैं, कौन आ रहा है। नहीं, बड़े भगवान तो सर्वाकर्षक है ही है। तो बलि महाराज को मन बलि महाराज के मन में भी वही बैठे हुए तो उन्होंने अपने और सबका उनको आकर्षित कर लिया। अब भगवान जैसे घुमाना चाहे तो व्यक्ति तो घूमता ही रहेगा। तो बलि महाराज उठकर भगवान वामनदेव को सब उनको जो है प्रणाम किए और उनको जो है याचना किए उनके अच्छे विधिवत जो है पाद्य अर्घ्य के द्वारा उनका पूजा किए और प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते थे, स्वतः ही देना चाहते थे, क्योंकि बलि महाराज जो है दान में जो है सबसे दानवीरों में आते बलि महाराज। तो बलि महाराज बड़े उदार हृदय के, तो ब्राह्मण को स्वतः ही दान देना चाहिए, तो ब्राह्मण अगर मेरे पास आए किसी ना कुछ कारण बस। तो हम सुन रहे हैं कि कैसे भगवान वामन देव जो है एक ब्राह्मण के रूप में आके बलि महाराज कैसे जो है कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए बलि महाराज से सब कुछ लेना चाहते, सब कुछ दान में लेना चाहते। इस समय भगवान मार नहीं सकते, चाहे तो मार सकते थे लेकिन इस समय जब ठीक नहीं। तो और खास करके ये बलि महाराज के परिवार को, परिवार के प्रति प्रहलाद महाराज जब से आए हैं तब से जो है स्नेह बन चुका है, फिर मारने का तो मतलब नहीं होता, अब क्या करें। तो इनको जो है कपटपूर्ण व्यवहार के द्वारा इनका सब कुछ मैं जो है हरण कर लूँगा। तो इस प्रकार जब बात किए और उनसे संकल्प करने जा रहे थे कि मैं उसमें जो सब कुछ ठीक है मैं सबको देना चाहूँगा, क्रमशः हम सब सुनते आ रहे हैं। और हम सबको भागवतम पढ़ने में रुचि रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब भागवतम पढ़ेंगे तभी हमारा भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, नहीं तो हमारे संसार के प्रति आसक्ति जो है बना रहेगा, बद्ध जीव का लक्षण है। इसलिए भागवतम की औषधि है, भागवतम ग्रंथ के साथ भगवान के साथ साथ जो है एक औषधि भी है, भव औषधि अत्र मनोभिराम। तो इसलिए एक एक श्लोक औषधि है, इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो भगवान के प्रति हमारा फेथ श्रद्धा बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगा। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ते उनके लिए भी भागवतम है, उनको जो फिर उसमें जो है रस मिलेगा। तो क्रमशः का भी भक्त लोग चर्चा करते आ रहे, कल भी हमारे जो हल्दर महाराज जी काफी अच्छा व्याख्या किया, वो सब इसका रहस्य जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। तो जब तो आज के श्लोक में चर्चा आई है कि अगर आप सब कुछ दे दोगे तो कैसे काम चलेगा। बलि महाराज संकल्प करने जा रहे हैं, सब कुछ देने का वचन दे दिए, संकल्प करने वाले हैं अभी। तो उस समय शुक्राचार्य समझ गए कि अगर शुक्राचार्य समझ गए कि बलि महाराज सब कुछ अगर दे देंगे तो जानते नहीं कि कौन है, ये सोच रहे कि जो है ये कोई ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण नहीं, ये भगवान है, ये भगवान विष्णु है, ये आया है आके सब कुछ ले ले। उनको पता है कि भगवान का क्या कार्यकलाप है, एक ब्राह्मण को उनको पता लग गया, क्योंकि शुक्राचार्य साधारण व्यक्ति नहीं थे। भगवान भी कहते हैं कि मैं कभी ना उसना कभी, जो कवियों में मैं जो उसना कभी मैं विभूति हूँ। भगवान कहते हैं कि जो है जो शुक्राचार्य मेरे एक विभूति है। तो विभूति होने के कारण समझ गए भगवान की भविष्य में क्या क्या कार्यकला भगवान करने वाले। तो उन्होंने जाकर बलि महाराज को रोके, तुम जानते नहीं हो, क्रमशः सब कुछ बताते हुए आ रहे। तो आज के समय में ये कहा गया है त्रिविक्रम इमान लोकान विश्वकाय क्रमिषति सर्वसम विष्णु में दत्वा मूढ़ वर्तते कथम। तो शुक्राचार्य जी असुरों के गुरु शुक्राचार्य, ऐसे तो जन्म हुए बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु ब्राह्मण के पुत्र है शुक्राचार्य जी, लेकिन जो है या असुरों का उन्होंने वो गुरुत्व स्वीकार किए और गुरु का कार्य निभा रहे हैं। तो कह रहे ये जो आया है क्या छोटा सा ब्राह्मण, तुम जिसको ब्राह्मण समझ रहे हो, ये कह रहा मुझे तीन पग केवल भूमि दे दो, लेकिन तुम जानते नहीं हो, आप तीन पग पग भूमि देने के विषय बात करोगे, लेकिन ये जो भगवान है, ये जो ब्राह्मण है, ये धीरे धीरे करके तीनों पगों में सारा का सारा विश्व जो है नाप लेगा, धीरे धीरे करके सारा विश्व जो है नाप लेगा। अगर सब कुछ को दे दोगे तो तुम्हारा गुजारा कैसे चलेगा। तो प्रभुपाद भी परिहासपूर्ण बातों में कह रहे हैं कि शुक्राचार्य जो है पुरोहित थे, असुरों के पुरोहित ब्राह्मण, तो उनको भी जो है लालच थी कि अगर अगर सब कुछ विष्णु ले जाएगा, विष्णु को दे दिया जाएगा, तो मेरे काम कैसे चलेगा, मुझे अपना दान दक्षिणा कैसे मिलेगा। श्री श्री आधाराधिकार कृष्ण बलराम को अमित जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो मेरा काम कैसे चलेगा। तो ब्राह्मण का चिंता, ब्राह्मण को चिंता होती है। तो ये जो है प्रभुपाद विचारधारा रख है। तो वास्तव में शुक्राचार्य जी श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर असुरों को गुरु बनना पड़ा और उनको असुरों के हित के विषय में चिंता करना पड़ता पुरोहित। तो क्यों देखा जाता पुरोहित जो है ज्यादा अच्छा काम नहीं होता। पुरोहित करने वाले व्यक्ति को अपने जो यजमान है उसका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसका नाम है पुरोहित। पुर मतलब शरीर, हित जो इस शरीर का हित चाहने वाले। इसलिए हमारे बड़े पहले के समय सारे राजा लोग जो है अपने पास राजगुरु राजपुरोहित रखते थे, जिससे कि राजा के विषय में उनके शासनकाल के विषय में सही विषय का निर्णय लेने के लिए ब्राह्मण को रखा जाता था। तो उसी प्रकार शुक्राचार्य जी भी थे, तो उनको भी जो है कह रहा था मेरा काम कैसे चलेगा, सब कुछ दे दोगे, चलो तुम तो सब कुछ दे दोगे, तुम्हारा जो गया गया, भाई मेरा भी तो दाना पानी बंद हो जाएगा, तो मेरे कैसे गुजारा चलेगा। तो ये जो है शुक्राचार्य जो है सोच रहे। शुक्राचार्य अन्यत्र भी जो है दिव्यानी के प्रसंग में भी इस प्रकार से शुक्राचार्य भी जो है बड़े पश्चाताप करते हैं। ये पुरोहित का काम जो है बहुत ही बेकार है। पुरोहित का काम करके जो इन लोगों का जो है इनका चापलूसी करना पड़ता है। अच्छा है कि ये सब काम धंधा छोड़ के हम भिक्षा यापन करते हुए जीना शुरू करें। तो इसी प्रकार जो इससे पता चलता है जो कि अगर यहाँ पर शुक्राचार्य जी दान देने के लिए मना कर रहे बलि महाराज को, लेकिन शुक्राचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, भगवान के विभूति है। और अगर शुक्राचार्य कुछ भी कर रहे हैं, ये देव की प्रेरणा से जो है, भगवान का प्रेरणा से जो है उनको कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त बलि महाराज का और उनका यश बढ़ाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों का अच्छे ढंग से जो है मंथन करके उनको जो है उनका यश उनको स्थापित करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं समाज को कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। तो शुक्राचार्य का एक अपना जो रोल जो है इसी लीला में एक जिनको रोल का उनको भी मौका मिला। लेकिन ये भी शिक्षा प्राप्त होता है जो पुरोहित काम जो है ये नहीं समझ कि हम जो किसी ब्राह्मण को दान दे रहे कुछ कर रहे हैं उसको बहुत बड़ा हित कर रहे हैं। अगर पुरोहित हम देखेंगे इस प्रसंग में कि बलि महाराज जो है शुक्राचार्य की बात को नहीं मानेंगे, गुरु के कहने पर भी जो तभी भगवान को जो है दान देंगे, क्योंकि इससे शिक्षा मिलता है कि सदैव ब्राह्मण को वैष्णव को गुरु को यही प्रयास करना चाहिए कि जो उनके अधीनस्थ लोग हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए, भगवान विष्णु की भक्ति में लगाया जाए। और भगवान विष्णु की भक्ति से दूर किया जाता है तो उसको जो है त्याग किया जा सकता है। बलि महाराज के प्रश्न ये हमें सुनने के लिए सीखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ शुक्राचार्य जी जो है शुक्राचार्य जी भगवान की प्रेरणा से ही इस प्रकार उनको मना कर रहे थे कि आप दान मत दो। अगर कोई व्यक्ति कोई ब्राह्मण है कोई भी वैष्णव है कोई अगर गलत जो है मार्गदर्शन करता है तो उसको रिएक्शन लगता है पुरोहित, और सही दिशा देगा तो उसके लिए अच्छा है, उसका तेज बढ़ेगा, उसकी जो है ब्रह्मनिष्ठ बनेगा। अगर किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज करता है शिक्षा देने में करने में तो उसको जो है उसका भागी बनना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण का जो है ये नहीं समझते कि ब्राह्मण के हम दान दें उस पर एहसान कर रहे हैं, एहसान जो है हम अपने ऊपर कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को दान देकर। तो इसी प्रकार जो ये शिक्षा प्राप्त होता है शुक्राचार्य जी के विषय में। तो शुक्राचार्य जी यहाँ पर आज के श्लोक में बता रहे, सब कुछ अगर भगवान विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, भगवान को मत दो। लेकिन बलि महाराज वो किसके पौत्र है, प्रहलाद महाराज का, विरोचन के पुत्र, प्रहलाद महाराज के पौत्र। और बलि महाराज हमेशा ही दान दिया करते थे, कोई भी उनके पास आते तो दान के लिए कभी मना नहीं करते। जैसे इनका जो नाम आता है, जैसे कर्ण में हो गए, और जो बड़े बड़े दानी हुए हैं उन दानियों में जो है बलि महाराज का नाम आता। बलि महाराज जो नाम ही इसलिए है कि उनका नाम बलि इसलिए पड़ा कि उन्होंने बलिदान किए भगवान को। तो जब बलि महाराज को पता चला कि जब उन्होंने गुरु ने बता दिया कि ये जो है ये आपका जो है कोई ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, तो जैसे समझे कि भगवान है, भगवान को दान देना है, तो इतने उत्साहित हो गए, इतना उत्साहित हो गए कि उन्हें उनको दान देकर ही रहूंगा, मैं क्या हूं भगवान के सामने, भगवान तो सब कुछ, बाद में भगवान तो सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं से सृष्टि हुआ है, सब कुछ उनका उन्हीं का उत्पन्न किया हुआ। अगर दान देना हो तो ऐसे व्यक्ति को दान दो कि अपना जो है यश रहे। तो जब उन्होंने सुना कि भगवान को दान देना, तो फिर जब उत्साहित हो गए, नहीं मैं जो भगवान को दान देकर ही रहूंगा, दान देना हो तो भगवान को देना चाहिए। और हमारे बलि महाराज जो है एक महाजन है, आत्मसमर्पण के जो है एक आचार्य है और महाजन है। तो ये बलि महाराज के जीवन से पता चलता है कि अगर दान देना हो तो भगवान को हो दान देना चाहिए, और उत्साह से देना चाहिए, और सब कुछ देना चाहिए। अगर उत्साह से सब कुछ भगवान विष्णु को व्यक्ति देगा तो वो भी जो है भगवान का भक्त बनेगा, भगवान का विष्णु को देने से। इसलिए भगवान बताते कि यद करोसि यदोस्नासि यद जोहोसि ददासि यद यद तपस्वी कौनते तत्कुरु से मदर पड़ा। सब कुछ जो है मेरे लिए करो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी कर्म करते हो, सब कुछ करते हो वो मेरे लिए करो। तो ये है, दान देना हो तो भगवान विष्णु को दान देना चाहिए, दान में किसी प्रकार का कंजूसी नहीं करना चाहिए। और दान देकर इसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, जब दान दिए बलि महाराज, उसके इसके इनका रिजल्ट क्या हुआ कि भगवान उनके अधीन, हमेशा के लिए उनके अधीन हो गए, उनके जो द्वारपाल बन गए। और आने वाले अगले मनमंत्र में बलि महाराज जो है यही इंद्र बनेंगे। और इस अवतार में क्या किए, इस समय क्या कर रहे हैं, बलि महाराज से सब कुछ छीन कर इंद्र को दे रहे हैं। और जब मनमंत्र खत्म हो गए मनमंत्र, फिर जो है इंद्र कहेंगे भाई तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम अपने पद से हटो, वो नहीं हटना चाहेगा। फिर भगवान जब से उसे युद्ध करेंगे, उस इंद्र को हटाकर जो है बलि महाराज को इंद्र का जो है आसन में बिठाएंगे। तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं। अब पिछले श्लोक में भी कहा गया है, भगवान को हरि कहा गया है, हरि मतलब सब कुछ जो है हरण करने वाले, सब कुछ लेने वाले। तो भगवान का जो स्वभाव है, भगवान सब कुछ ले लेते हैं। हरिरा अनेक अर्थ दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मां। हरि का अनेक अर्थ है, दो जो है मुख्यतम है कि सभी प्रकार अमंगल को हरण करने वाले और प्रेम देते हैं, प्रेम देकर अपने मन को जो है हरण करने वाले, दो चीज है। हमारे जीवन का सारे अमंगल हरण कर देंगे, इसलिए वो हरि है, इसलिए हरि को जो है देना चाहिए। अब फिर भगवान जो है प्रेम देते हैं, तो हरि को देना चाहिए। हरि का स्वभाव ऐसे ही है, वो हरण करने वाले, सब कुछ जो है धीरे 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 हरण करेंगे, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक है, वो हमारे शुभचिंतक है। भगवान चाहते हैं ये सभी जितने भी लोग हैं सबके सब सुखी हो सकते हैं मेरे पास आने से, लेकिन इन लोगों में जो है समर्थता नहीं है कि मेरे पास आ सके, कोई नहीं आ पाएगा। माया इतनी प्रबल है, जकड़ा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, ये लोग नहीं आ सकते। इसलिए क्या करते हैं, हरि भगवान जो है स्वयं ही चल के आते हैं। जैसे बलि महाराज के पास जो है चल के आए, उनका सब कुछ लेने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए जो है भगवान आते हैं। तो इसी प्रकार जो हरि जो है वो धीरे धीरे करके हमें शुद्ध करेंगे। जब भगवान के पास आते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, भगवान धीरे धीरे उसको जो है शुद्ध करते हैं, उनसे धीरे धीरे सब कुछ छीन लेते हैं, उसका काम को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, शत्रु को समाप्त करेंगे, धीरे धीरे उसको शुद्ध करेंगे और धीरे धीरे उसका मन को विहरण करेंगे, मन में अपने में लगाएंगे। ये भगवान का काम है, क्योंकि हम नहीं कर सकते इसलिए कार्य भगवान कर रहे हैं। तो ये जो है हरि है, ऐसे हरि का जो है भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए हरि से डरना नहीं चाहिए, हरि से दूर जाना नहीं चाहिए, चिंता जो है करने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान हमारे शुभचिंतक है ना, शुभचिंतक है। भगवान जब अगर हमसे सब कुछ ले लेंगे, सब कुछ ले, हालांकि भगवान सबसे ऐसा काम करते नहीं है, सबसे छीनते नहीं है, सबसे लेते भी नहीं है भगवान, है ना। लेकिन जब भगवान अगर किसी कृपा करते हैं तो भगवान उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, फिर उसके अपने हो जाते हैं, फिर किसी प्रकार का चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाता। उसके जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करेंगे, उसको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उसको मुक्त करेंगे, फिर जो है फिर ऐसे हरि से क्या डरना चाहिए। तो भगवान वास्तव में जो है कृष्ण ऐसे है, कृष्ण का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, हरि शब्द उच्चारण करने से, एक बार अगर हरि को पुकारा तो हरि तो आपके पास आ गए, चाह के भी जो है आप उनसे जो है दूर जा नहीं सकते। एक बार अगर हरि आ गए तो धीरे धीरे जो है हमारे जो है बुलाते रहेंगे, मंदिर बुलाते रहेंगे, आते रहो, प्रसाद खाते रहो, कीर्तन करते रहो, फेस्टिवल देखते रहो, आप जो है धाम यात्रा करते रहो। धीरे धीरे पता चलेगा भाई जो हम लोग भौतिक नृत्य कर रहे थे उसे कितना दूर जो है हम लोग आ गए, पता ही नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार जो फिर धीरे धीरे क्या हो, फिर कथा, रेगुलर कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते जो है वो हरि जो है हृदय में बैठ जाएगा, फिर जो है हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हरि में और हमारे क्या एक पिता और पुत्र का संबंध है, पिता चाहते मेरे बच्चे जो सब लोग सुखी रहे, सब शांति से रहे, सब आनंद पूर्वक रहे, मेरे पास जितने संपत्ति है मेरे संपत्ति का सब लोग जो है आनंद उपभोग करें, अपना वैकुंठ देना चाहते हैं, अपना धाम देना चाहते हैं। तो ऐसे हरि जो है भगवान वामन देव जो है आए और सब कुछ हरण करने के। तो बलि महाराज को तो यही तो किया, जैसे बलि महाराज ने जिस प्रकार से समर्पण किए तो ये कोई साधारण बात नहीं है। बलि महाराज सब कुछ राज्य प्राप्त किए हुए थे, तीनों लोग उनके पास जो था, लेकिन सब कुछ दे दिया, लेकिन ऐसे लग रहा था कि अब तो मैं कुछ भी दे नहीं पाऊंगा। भगवान भी समझ गया तो बलि क्या देगा, उसने सब कुछ ले लिया। लेकिन बलि महाराज ने बाद में बताया कि अभी जो है धन का स्वामी मैं हूं, बाकी मुझे भी आप ले लीजिए। तब जो है भगवान भी आश्चर्य हो जाते, जब भक्त लोग जो आत्मसमर्पण करते, भगवान को भी पता नहीं होता मेरे भक्त कितने महान हैं। तो इसलिए उनका महानता को बताने के लिए बलि महाराज भगवान वामन देव इस लीला को रचना की। तो भगवान जो है बलि महाराज के पास आकर सब कुछ हरण कर रहे हैं। इसी प्रकार और जब भगवान सब कुछ ले, भगवान कितनी परीक्षा लेते भक्तों से, तो इसी प्रकार और भी एक प्रसंग है कि कैसे भगवान परीक्षा लेने के लिए अपने भक्तों के पास आते हैं। और आओ जो है भक्तों सब कुछ ले लेते हैं। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग में आता है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तब भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में अपने अश्वमेध यज्ञ घोड़े को भेजा गया, तो उसका पीछे पीछे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनका सारथी बन के कर रहे थे। भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों का जो सारथी बन, तो हमेशा जब मर्जी भगवान जो सारथी बन, किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। तो इसी प्रकार वो भ्रमण करते करते सारे विश्व को जीतते हुए आ रहे थे। तो उस समय रास्ते में एक रत्नपुर नामक गांव पड़ता है, एक शहर है, बड़ा अच्छा शहर था, राज्य था। वहाँ पे ताम्रध्वज और मयूरध्वज नामक, मयूरध्वज के पुत्र और ताम्रध्वज जो है उनका पुत्र था ताम्रध्वज, ये भगवान के भक्त थे, राजा थे। उनके ये राजा भी थे और भक्त भी थे। इस कारण से क्या हुआ कि सारे के सारे प्रजा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उन्हें किसी प्रकार इंद्र तृप्ति में किसी प्रकार का रुचि नहीं था। सब जगह भगवान का कीर्तन होना, एकादशी व्रत का पालन करना, भगवान का उत्सव को एक से एक ढंग से मनाया करते थे। एक से एक खर्चा करके भी भगवान श्री कृष्ण के उत्सव इत्यादि जो है, सभी भगवान के जितने भी अवतारों का, लीलाओं का जितने भी उत्सव आते थे, सब कुछ मनाते थे। इसी प्रकार जो है राज्य करते थे। उनके भगवत भक्ति से राज्य एकदम इतने शक्तिशाली और किसी प्रकार का प्रजा दुखी नहीं थे, सबके सब शांत थे। जब राजा के अंदर भगवान को भक्ति होती है, तभी प्रजा सुखी होता है। तो बलि महाराज भी देख रहे थे, जैसे इस श्लोक में कहा गया है, सर्वस्व विष्णु में दत्त्वा, अगर सब कुछ विष्णु को दे दोगे तो कैसे काम चलेगा, मत दो, भगवान को मत दो, भगवान को सब कुछ मत दो, कहते शुक्राचार्य जी कह रहे। लेकिन भगवान को देना ही धर्म है। अगर कोई राजा राज्य करता है, भगवान को भक्ति नहीं करता, भगवान को देता नहीं है, अर्थात भगवान को प्रणाम नहीं करता, भगवान का नाम का जप नहीं करता, भगवान का भक्त नहीं है, तो वो ना वो ठीक से राज्य कर पाएगा, ना वो राज्य करके स्वर्ग प्राप्त करने को, वैकुंठ प्राप्त करने को उसको मौका नहीं मिलेगा, सारे के सारे प्रजा जो है दुखी हो। अगर व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, विष्णु को देता है, विष्णु का पूजा करता है, विष्णु की इच्छा को पूर्ति करता है, तो व्यक्ति के अंदर जो अच्छा राज्य कर पाए। हमारे इतिहास में सारे के सारे जो है इसी प्रकार जो रहा करते थे। भगवान रामचंद्र भी देखिए इसी प्रकार जो है ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे, सब कुछ ब्राह्मणों को जो है दान में, सारा पृथ्वी दान कर दिए। हमारे अम्बरीश महाराज ले लीजिए, दृष्टि महाराज ले लीजिए, तो ये सबके सब जो है भगवान के, इसलिए राजा के अंदर भक्ति होनी चाहिए, भगवान विष्णु को देने की उसके अंदर जो है लालच होनी चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी वो राज्य का अच्छे ढंग से पालन कर पाएगा, नहीं तो पाप का भागी बनना पड़ेगा। सब प्रजा से कर लेके अगर विष्णु को नहीं देगा, भगवान का उत्सव नहीं मनाएगा, और इस प्रकार जब मंदिरें नहीं बनाएगा, तो उसका तो पाप लेना पड़ेगा, पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर राजा पाप है, तो प्रजा के अंदर स्वतः ही पाप जागृत हो जाएगा। इसलिए प्रजा को ठीक रखने के लिए और राजा को ठीक रखने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। हमारा भारतीय इतिहास में भी देखा जाता है, सारे के सारे जो बड़े बड़े राजा लोग थे, सबके सब राजाओं का बनाया हुआ इतने बड़े बड़े मंदिरें हैं कि सब कुछ जो है भगवान विष्णु को दिया करते हैं। उनको पता है कि भगवान को देने से ही हम लोग अच्छे ढंग से राज्य कर पाएंगे, हमारी चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो हम अच्छे ढंग से राज्य कर पाएंगे। और भगवान उनके भगवान जो इसलिए भगवान कह रहे कि जो राजा है वो मेरा ही प्रतिनिधि है, भगवान विष्णु का ही प्रतिनिधि है, तो इसीलिए अपने भोग के लिए नहीं होता, भगवान को देने के लिए होता। तो राजा का कर्तव्य होता है भगवान को समर्पण करें। तो सर्वस्व विष्णु विदित, सब कुछ भगवान को देना चाहिए। इसी प्रकार जो राजा मयूर ध्वज सब कुछ भगवान की भक्ति करते थे, इतने प्रजा इतने खुश थे, सबके सब कृष्ण भावना में जो है सबके सब थे, सब लोग कृष्ण कथाएं किया करते थे। तो उसी क्षेत्र में जो है महाराज मयूर ध्वज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपना घोड़ा छोड़े हुए थे। इधर युधिष्ठिर महाराज भी यज्ञ करने के लिए अपना घोड़ा छोड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर महाराज घोड़े के पीछे जो है कृष्ण अर्जुन पीछा कर रहे थे, और इनका पीछे उनका पुत्र मयूर ध्वज का पुत्र ताम्र ध्वज उनका पीछा कर रहे थे। तो क्या हुआ, बीच में दोनों का मुलाकात हो गया, दोनों घोड़े जो है वापस से मिल गए। तो समझ गया किससे घोड़ा क्या है, और भाई घोड़ा किसका। दोनों वापस में जो है बड़ी धमासम से युद्ध होने लगा, आपका अर्जुन का और ताम्र ध्वज का। भगवान कृष्ण साथ दे ही रहे थे, लेकिन जैसे तैसे कथा बहुत लंबी है इसका, अगर पूरा हिस्ट्री को देखा जाए तो यही था। तो बाद में क्या हुआ कि भगवान और अर्जुन जो हार गए, उनको मूर्छित में आ गए, युद्धस्थल से बाहर चले गए। तो ताम्र ध्वज क्या है, दोनों घोड़े को लेके अपने राज्य में रत्नपुर को आ गए। तब जैसे अपने राज्य में पहुंचे, राज्य के प्रारंभ स्थान पे ही महाराज मयूर ध्वज पेड़ का छाल मृग छाल पहनकर जो है दीक्षित होकर अश्वमेध दीक्षित होकर बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा दो घोड़े आ गए, तो घोड़े किसके आए पूछे, कि दो घोड़े जो है दृष्टि महाराज का आ गया। सब कुछ बात बताए, तो सब कुछ घटना बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज ताम्रध्वज ने कहा ठीक है, तो आप आ गए हो तो फिर अभी हम यज्ञ प्रारंभ करते। तो यहाँ पे यज्ञ की तैयारी होने लगा, इधर कृष्ण और अर्जुन का जो मूर्छा भंग हुआ, तो अर्जुन उठते ही देखा कि मेरा घोड़ा नहीं है, क्या होगा विलाप करने लगा। तो भगवान तो सब जानते ही, वो जानते हैं कि मेरे जो मयूर ध्वज है वो कितना बड़ा भक्त है, वो क्या करने के लिए तैयार है, वो जो करने के लिए तैयार है। अर्जुन तुम भी तैयार नहीं हो इस चीज करने के लिए, तो अपना भक्त मयूर ध्वज का यश बढ़ाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, अर्जुन एक काम करते, ये जो ताम्र ध्वज जो है राजकुमार ताम्र ध्वज हमारा अश्वमेध घोड़े को ले गया, तो आप हमें हम जाएंगे उनसे याचना करने के लिए, इनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है भगवान के बहुत भक्त हैं और ब्राह्मण उनके अनुकूल है, हम इनसे भी जो है युद्ध करना पराजय करना असंभव है। जैसे हम उनका पुत्र को अगर हरा नहीं पाया तो उनका पिता कहाँ से हरा पाएंगे, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनसे हमें याचना करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करो, मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश ले लेता हूं, तू मेरा शिष्य बन जा। छलने के लिए जा रहे ताम्र ध्वज, तो क्या किए वो जो है दोनों अपना वेश बदल के, अर्जुन और भगवान कृष्ण वेश बदल के रत्नपुर में गए। तो जैसे तेजस्वी ब्राह्मण आए, जैसे आए उठ के प्रणाम करने वाले थे, भगवान तुरंत उसी समय जो है स्वास्थ्य वाचन कर दिए, स्वास्थ्य वाचन मंत्र बोल दिए। तो बोलने पर जो फिर जो है राजा उठ नहीं सकता, आशीर्वाद पहले दे देते फिर क्या उठेगा, तो बैठा रहा। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, ब्राह्मण देवता आपको देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और दूसरी बात मेरा प्रश्न है कि कोई ब्राह्मण आता तो राजा करते हुए उठ के उसको प्रणाम किया जाए, उसका स्वागत किया जाए, मैं स्वागत करने से पहले आपने स्वास्थ्य वाचन कर लिया तो फिर इसका मतलब मेरे से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो फिर बोला कि आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आपको कुछ मैं देने की इच्छा हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने कपटपूर्ण बात से बात बता रहे कि महाराज मैं युद्धिष्ठ को बता रहा हूं, मैं भ्रमण करते करते आ रहा था किसी किसी राज्य से, मुझे पता चला कि आपके राज्य में एक कृष्णदास नामक ब्राह्मण रहता है, उसकी कन्या है, तो मेरा एक पुत्र है, उससे विवाह करना चाहता हूं, तो इसको मैं लेकर आया। तो रास्ते में जंगल में एक शेर मिल गया, उस शेर ने मेरे पुत्र को जब पकड़ लिया, उसको खाना चाहता है, मैंने मना किया कि मेरा एकमात्र पुत्र है, उसको मत खाओ, उसको खा लोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। कौन कह रहा है बात? भगवान कह रहा है, मेरी मुक्ति कैसे होगा, क्योंकि पुत्र ही तो अपने बाप को मुक्त कर सकता, तो इसीलिए जो मेरी पुत्र जो है इस प्रकार से जो है वो शेर के चंगुल में फंसा हुआ। मैं शेर को बहुत प्रार्थना किया, मेरे पुत्र को छोड़ो, इसके बदले आप मुझे खा लो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, जो भगवान की प्रेरणा से जो चीज मेरे पास आ गई मैं उसी को खा, तुम क्यों खाऊंगा। तो बहुत प्रार्थना करने पर भगवान कह रहे, बहुत प्रार्थना करने पर जो है उस शेर ने कहा ठीक है, एक चीज से मैं जो है संतुष्ट होकर तुम्हारा पुत्र को छोड़ सकता हूं, कि इस राज्य में मयूरध्वज नामक जो है राजा है, उसका अगर आधा शरीर काट के ले आओगे तो मैं जो है फिर मैं उसको ले लूंगा, तुम्हारा पुत्र को छोड़ दूंगा। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त से कितना जो निष्ठुर होके जो है ऐसे बात कह रहे हैं कि ये मुझे आधा शरीर चाहिए। तो इस बात को सुनकर सारे प्रजा लोग हाहाकार हो गए, अरे हमारे राजा को, ऐसे राजा के राज्य में सारे प्रजा सुखी है, किसी प्रकार असुविधा नहीं है, और ये मांगने के लिए क्या आया है, और हमारे राजा तो मना करने वाले है ही नहीं, जो भी आप उसको मना तो नहीं कर सकते, ब्राह्मण को तो दान देते ही है, तो अब क्या, अब जो है सब लोग बड़े वापस में चर्चा करने लगे। तो राजा ने सबको मना किया कि आप किसी प्रकार चर्चा मत, किसी प्रकार का मत कीजिए, ये सौभाग्य है कि मैं जो किसी ब्राह्मण के काम में आ रहा हूँ, तो मैं निसंकोच आपको जो है अपना शरीर देने के लिए मैं तैयार हूँ, कहके इस प्रकार जो है जैसे यहाँ वामन देव बलि महाराज संकल्प कराएंगे उसी प्रकार इन्हें भी जो संकल्प भगवान कह रहे ठीक है ऐसे काम नहीं, आप संकल्प कीजिए, तो संकल्प भी करवा रहे मयूरध्वज से। तो मयूरध्वज ने कहा संकल्प भी किए, तो फिर अपने जो मंत्री को कहा कि आप जाके वो दो कारीगर को लेके आइए और मेरे शरीर को बांध कर आरी से मस्तक पे जो आरी चलाइए, शरीर को दो 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 खंड कर दीजिए, जिससे कि जो है खंड जो ले जाएगा। तो जो उसी प्रकार सब कुछ तैयारी हो गया, भगवान ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे बैठे हुए, वहाँ पे सब कुछ देख रहे, भगवान आंखें सामने हो रहा है कि तो आरी जो है जैसे चलाने वाले थे उस समय की पत्नी आ गई, मयूरध्वज की पत्नी आ गई, कहा कि भाई देखो मैं आपकी पत्नी हूँ, और पत्नी जो है पति का आधा शरीर होते हैं, अर्धांगिनी होती है, तो आपका आधा शरीर तो मैं ही हूँ, तो आप जीवित रहिए, आप प्रजा का पालन कीजिए, अगर आधा शरीर शेर को खाना है तो मैं चली जाती हूँ। तो भगवान फंस गया, अब क्या करूँ भैया, तो पत्नी जाने के लिए तैयार है, क्या करना चाहिए। तो भगवान फिर भी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी उनको जो है कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उस शेर ने कहा था कि राजा का दक्षिण अंग राइट हैंड की तरफ चाहिए, तो फिर दक्षिण अंग चाहिए, तो फिर लेफ्ट हैंड लूंगा नहीं, लेफ्ट साइड नहीं लूंगा, राइट साइड लूंगा। तो जैसे फिर द्वारा चलाने वाले थे उस समय जो है उनका पुत्र आ गया ताम्रध्वज, क्या मैं जो है आपका आधार तो मैं हूँ, पुत्री होता तो मैं चले जाता हूँ। तब भी जो है भगवान जो है अब क्या करूँ, कह रहे राजा देखो ऐसे बात बनाने से नहीं चलेगा, यहाँ भक्त का जीत हो रहा है, भगवान जो है हार रहे, ऐसे बात करने से नहीं चलेगा, आपका आधा शरीर देना दीजिए तो मैं चले जाता हूँ, चाहे मेरा पुत्र मर जाए कोई बात नहीं। तो कहके जैसे कहने वाले थे तो उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किए राजा मयूरध्वज, नहीं आप लोगों को अपने पुत्र पत्नी को समझाए कि बहुत समझाने के बाद कहा कि आपको दुखी नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं, आपके मन में किसी प्रकार का शंका नहीं होना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, एक तरफ पुत्र एक तरफ पत्नी पकड़ के जो है मयूरध्वज का जो है सिर काटेंगे। इसी प्रकार जो निर्णय किया गया तो फिर जो है लेकिन वो मयूरध्वज भगवान का नाम ले रहे थे, हे गोविंद हे माधव हे केशव कहकर आनंदपूर्व भावना नाम ले रहे हैं और जो है किसी प्रकार मन में कोई इसके दुख नहीं। तो यहाँ पे आरी जो है चला गया, तो आरी जो जो चिरते हुए जो है आधा तक जो है यहाँ तक आ गया था, छाती तक आ गया। तो उस समय भगवान ने देखा कि राजा का आंख से जो है आंसू निकल रहा है, तो भगवान तब भी वहां पर परीक्षा लेते हैं, कहते तुम भगवान कह रहे देखो राजा तुम्हारा शरीर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो है तुम रो रहे हो, तुम्हारा आंख से तुम दुखी हो, तुम्हारे आंख से आंसू आ रहा, तुम रो रहे हो, मुझे तो कोई दुखी भी दुखी हो कोई दान देता है तो दान स्वीकार करने योग्य नहीं, तुम रहो और मैं जो है जा रहा हूँ कहके चलने लगते। उस समय उनकी पत्नी आती है तुरंत, वो मयूरध्वज के जो मयूरध्वज का जो सिर को पकड़ के दबाती है, दोनों को मिला दोनों शरीर को मिलाती है, फिर जो है राजा कहता है ब्राह्मण इधर आओ मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आप जान आपको पता है मैं आपको पूरा संतुष्ट करूंगा, आपको पता नहीं मैं किस लिए जो है मैं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर का आधा अंग ब्राह्मण के काम आ रहा है लेकिन आधा अंग जो है मेरे काम किस काम का नहीं आ रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। इस बात को जैसे सुने भगवान जो है फिर जो है उनसे रहा नहीं गया, तुरंत भगवान जो वहाँ पे अपने असली रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, अर्जुन भी जो है अपने असली रूप में आ गया। तो आके जो है राजा को दर्शन दिए और उनका जो है भगवान का दृष्टिपात से राजा फिर दोबारा ठीक हो गया, और जो सारे प्रजा लोग प्रजा वहाँ पे थे सब देख रहे थे क्या है भगवान विष्णु परीक्षा लेने के लिए अपने भक्त का कहाँ कहाँ तक परीक्षा ले सकते हैं। इसी प्रकार जो है राजा मयूरध्वज का भी भगवान जो परीक्षा लेने के लिए आते, तो भगवान अपने भक्त से परीक्षा, तो इससे क्या है अर्जुन को भी मिला तो भाई कैसे कैसे भगवान के भक्त होते हैं, हम सोचते मैं ही जो है उनका सखा हूँ मित्र हूँ मैं ही उनका जो भक्त हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करने के लिए तैयार, आपकी कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं, वो कृष्ण का भक्त भक्त भगवान अपने भक्त से जो है कैसी परीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार जब फिर जो है उनका पूर्ण स्वास्थ्य करवा दिए और उनका अश्वमेध यज्ञ, फिर ये हुआ कि इस अश्वमेध यज्ञ में स्वयं अर्जुन और भगवान जो स्वयं उस अश्वमेध यज्ञ में रहकर राजा का यज्ञ पूरा करवाए और उस यज्ञ में भगवान स्वयं जो है वहां पे नौकर का कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार जो है भगवान अपने भक्तों को परीक्षा भी लेते हैं, जैसे बलि महाराज से भगवान वामन देव परीक्षा लेने के लिए आए, अब भगवान सब कुछ जो है देते ही हैं। तो इसी यही है कि आज के जो इस जो प्रसंग में जो शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान विष्णु को देने से कैसे काम चलेगा, लेकिन भगवान विष्णु को देने से ही जो है फिर क्या हो सकता है इसका जो वर्णन तो वो तो ब्रह्मा शिव शेषनाग इत्यादि जो है गान करेंगे। तो यही जो है इसलिए भगवान को देना चाहिए। बलि महाराज का प्रसंग में यही होता है कि भगवान को सब कुछ देने से किसी प्रकार का कमी नहीं होती, यही हम जो है आत्मसमर्पण के आचार्य बलि महाराज के द्वारा भगवान ने सारा जगत को सिखाया। हम सोचते हैं आत्मसमर्पण क्या है, आत्मसमर्पण तो बलि महाराज को देखो कैसे आत्मसमर्पण किया। तो इसी प्रकार अगर भगवान की भक्ति यद किंचित मात्र में थोड़ी भी करते हैं बड़े ज्यादा भी करते हैं तो किसी प्रकार का नाश जो है होता नहीं है, लेकिन विष्णु का भक्ति करने से हरि का भक्ति करने से ही होता है, बाकी चीजों से नहीं होता। इस प्रकार जो यही जो है इससे जो है शिक्षा प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण आप सबको बहुत धन्यवाद। जगत कृष्ण प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्रीराधिकारण भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत कृष्ण प्रभुपाद की, बलि महाराज की, भगवान वामन देव की, पिताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।